जो है तीन लोगों को इंजर किया, दो डिफरेंट इसने जो थी शूटिंग्स की, और गनमैन जो था 32 इयर्स उसकी एज थी, फिर उसको भी फाइनली जो है इन्होंने पकड़ लिया, और काफी हैवी आर्म्ड जो टीम्स थी वो यहां पे नजर आई। रॉटरडैम जो है वो अक्सर यहां पे शूटिंग्स होती रहती हैं, क्योंकि ये वो इलाका है नेदरलैंड्स का जहां पे के राइवल गैंग्स जो हैं, जिनके के बीच में ड्रग वॉर्स जो हैं वो चलती रहती हैं, तो उनके बीच में काफी ये शूटिंग्स चलती रहती हैं। 2019 में भी तीन लोगों जो थे उनको मार दिया गया था अट्रिज के अंदर, और यहां पे भी काफी फिर जो मारामारी इनके गैंग्स के बीच में चली थी, और फिर एक काफी ह्यूज मैन हंट जो था फिर शुरू किया था गवर्नमेंट ने। इसके जी एसोसिएटेड प्रेस ने आज न्यूज दी कि स्वीडन के अंदर भी सिमिलर वाकयात हुए, और यहां पे भी गैंग वॉर्स चल रही थी, क्रिमिनल गैंग्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें कि तीन लोगों की जो है वो फिर डेथ हुई, और ये गन वायलेंस जो है वैसे तो बहुत ही मिनिमल देखी जाती है यहां पे, लेकिन सितंबर का महीना जो है वो कहते हैं गन वायलेंस के लिए काफी डेडलीस्ट रहा, क्योंकि अभी तक यहां पे 11 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं गन वायलेंस की वजह से। और जब से ये पुलिस जो है इसने अपने स्टैट्स इकट्ठे करने शुरू किए, 2016 में इन्होंने शुरू किए थे, तो उसके मुताबिक ये जो इनका है सितंबर डेडलीस्ट मंथ है 2023 का। यहां पे वैसे तो आपको पता ही है कि स्वीडन इंतहाई सेफ कंट्री कहा जाता है उसको, रिलेटिवली क्राइम रेट काफी कम है, लेकिन यहां पे एक आदमी जो कि 18 साल का बच्चा ही आप समझ लें, उसको गोली मारी आज स्टॉकहोम के सबर्ब में, और एक और जो है उसको मारा, और फिर एक जो है वुंडेड था, और ये शूटिंग जो थी जॉडब्रो जो साउथ ऑफ स्वीडन का कैपिटल है उसमें ये रही, और जो औरत एक थी इन 20s में वो एक्सप्लोजन में उपसला में उसकी डेथ हुई है। तो पुलिस जो है अब ये इसको तो मर्डर ट्रीट कर रही है, और वो कह रही है कि जी ये जो पता नहीं चल सका है कि ये इसका मोटिव क्या था, तो ये मोटिव जो है ये सामने आएगा, लेकिन ये जो दो गैंग्स यहां पे रहते हैं स्वीडन के अंदर, एक स्वीडिश टर्किश ड्यूअल नेशनल जो कि तुर्की में रहता है वैसे तो, और दूसरा जो गैंग चलाता है वो उसका फॉर्मर ल्यूटिनेंट है, और इनके बीच में ड्रग्स और वेपन्स के लिए लड़ाइयां होती रहती हैं, जिसकी वजह से ये आज काफी ज्यादा जो है इट वेंट आउट ऑफ स्पायरल। अल जजीरा की एक स्टोरी है जी, और इसके मुताबिक जो है ये अब देखें ना खतरे की घंटियां जो हैं ये बढ़ती चली जा रही हैं। जर्मनी और इसराइल के बीच में एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है, एंड दिस इज फॉर एरो 3 हाइपरसोनिक मिसल सिस्टम्स। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं बोरिस पिस्टोरियस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए अपने इजरायली काउंटर पार्ट योआव गैलेंट के साथ कहा कि ये सारी डील जो है ये ना सिर्फ हमें बल्कि यूरोप को डिफेंस प्रोवाइड करेगी। इसकी डील की जो कीमत है वो है 3.5 बिलियन US डॉलर्स की जो सेल्स हैं, और पिस्टोरियस ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि जर्मन डिफेंस सिस्टम जो है वो काफी मजबूत इससे हो जाएगा, क्योंकि रशियन वॉर जब से बड़ी है यूरोप के अंदर भी खतरा काफी वॉर का बढ़ गया है। गैलेंट साहब ने इसके मौके पर बात करते हुए कहा जी कि हम जब हॉलोकॉस्ट पे देखते हैं तो वो इसी मुल्क में हुआ था, बट 80 ईयर्स सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और फिर से एक दफा इसराइल और जर्मनी जो है दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स, और ये सिस्टम जो है इसको डिजाइन किया है टू शूट डाउन मिसल्स जो कि अर्थ के एटमोस्फियर में चले जाते हैं, यानी इतनी इसकी ज्यादा रेंज है, एंड दिस इज डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय इसराइल एंड यूएस, लेकिन इसकी सेल के लिए यूएस का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहले जो है ये सिस्टम डिप्लॉय किया गया था इसराइल की जो एयर बेस थी एयरफोर्स की बेस इन 2017, और अब ये बेचा गया है जर्मनी को। रॉयटर्स की एक खबर है जी, और रॉयटर्स की इस खबर के मुताबिक जो रिपब्लिकन लेजिस्लेटर्स हैं यूएसए के अंदर उन्होंने कहा है कि एक हमको हियरिंग ऑफ इम्पीचमेंट बिठाने की जरूरत है बाइडन साहब के खिलाफ, क्योंकि उनके ऊपर बहुत अरसे से वो लोग एलिगेशंस लगा रहे थे ऑफ करप्शन, और खासतौर पे जो बाइडन साहब की फैमिली और उनका बेटा हंटर बाइडन की जो बिजनेस डीलिंग्स हैं उसके अंदर वो कहते हैं जी कि ये अपनी फैमिली का फायदा उठाते हैं और उसकी वजह से ये अपने जो है गलत किस्म के काम चलाते हैं। हाउस ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी कमेटी जो है उसने कहा है कि हम हियरिंग बिगिन करने लगे हैं। रिपब्लिकन चेयर ऑफ पैनल जो है जेम्स कोमर उन्होंने कहा है जी कि ये बहुत सारी हमने अनकवर की है एविडेंस जिसके के अंदर बाइडन साहब और उनकी फैमिली जो है उसने बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स लिए हैं और ये अमेरिकन पब्लिक से झूठ बोलते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि मुझे इस चीज का कोई नॉलेज नहीं है, हालांकि उसकी फैमिली जो है करप्ट बिजनेस स्कीम्स के अंदर इन्वॉल्व है, खासतौर पर उसका बेटा हंटर। डेमोक्रेट्स जो है जाहिर है कि उन्होंने इस इंपीचमेंट को स्लैम किया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जो आपके जो इल्ज़ाम हैं वो बेसलेस हैं। व्हाइट हाउस ने भी ये एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है। व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी कि ये बड़ी एक्सट्रीम किस्म की पॉलिटिक्स है जो कि बिल्कुल गलत है। और रिपब्लिकन हाउस स्पीकर केविन मैकार्टी ने कहा है रिपोर्टर्स को, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं हाउस कमेटी को डायरेक्ट कर रहा हूं कि ये एक ओपन प्रोसेस जो है वो शुरू करें। और उन्होंने कहा कि ये एलिगेशंस जो आए हैं अब्यूज ऑफ पावर, ऑब्स्ट्रक्शन, करप्शन, तो ये हमें कहते हैं कि हम जो है एक इन्वेस्टिगेशन बिठाएं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो अब देखेंगे जनाब क्या होएगा। एएफपी की आज एक रिपोर्ट है और उसके मुताबिक जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, वैसे तो आज आप ह्यूमन राइट्स वॉच की वेबसाइट पर भी जाएं तो सबसे ऊपर आपको यही खबर नजर आएगी कि जो कुछ यूरोपियन मैरीटाइम कंपनीज हैं वो अपने बड़े बड़े जो जहाज जिनको के उनको नाकारा बना दिया उसको डंप कर रहे हैं वो लोग बांग्लादेश के सीताकुंडा बीचेस के ऊपर, जो कि बे इंतहा खतरनाक किस्म का है क्योंकि ये पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं और इसमें बेशुमार बांग्लादेशी जो वर्कर्स हैं वो मरते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये नंबर वन वर्ल्ड की शिप ब्रेकिंग यार्ड है और यहां पे ये सारे कोई तकरीबन यूरोपियन शिपिंग कंपनी ने अपने तकरीबन 520 वेसल्स सिंस 2020 यहां पे बेचे हैं और यहां पे हजारों ही वर्कर्स जो हैं इनको यानी कि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर। और ये क्या कर रहे हैं कि अपनी सॉक्स जो हैं उनको यूज कर रहे हैं हैंड्स के ऊपर एज ग्लव्स जब ये स्टील मोल्टन कट करते हैं, और अपने जो माउथ है उसको कवर कर रहे हैं अपने शर्ट से ताकि इनके अंदर टॉक्सिक फ्यूम्स जो हैं वो ना जाएं। और ये बड़े बड़े चंक्स जो हैं इसके उठा के लेके जा रहे हैं बेयर फुट, ना तो ये कोई पहन रहे हैं प्रोटेक्टिव गियर, ना ही यहां पे जो गवर्नमेंट है वो मैनेज कर रही है इस वेस्ट को, जिसकी वजह से उनको काफी इंजरीज आ रही हैं। सिंस 2019 बांग्लादेश के 62 ये जो वर्कर्स हैं इनकी डेथ्स हो चुकी हैं जब ये डिसमेंटल करते हैं शिप्स को। बांग्लादेश की शिप ब्रेकिंग एसोसिएशन जो है उसने कहा है कि हम सेफ्टी अपग्रेड्स की तरफ जा रहे हैं, मगर जाहिर है कि इसमें टाइम लगेगा 2025 तक का, और फिर हम जो है ये सारे सेफ्टी मेजर्स जो इन प्लेस करेंगे। और मीन वाइल ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि ये यूरोपियन कंपनीज जो कर रही हैं काम बेइंतहा गलत कर रही हैं। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह जी कहते हैं कि आप बचा सकते हैं $1,775 तक अगर आपके पास दो गाड़ियां और एक घर है, और ऑल स्टेट की एजेक्स एजेंसी के अंदर ये काम करते हैं। और अगर आपको और भी गुडीज चाहिए, वो कहते हैं हर किसी का केस डिफरेंट है, हो सकता है कि आप ज्यादा पैसे बचा लें, लेकर उसके लिए आपको इनको फोन करना पड़ेगा। आप इनको फोन कर लें 8647290373 पे। और जनाब जो रियल्टर्स हैं वो कहते हैं जी, एग्जीक्यूटिव होम रियल्टी वाले वो कहते हैं जी कि अगर आपको अच्छे पैसे बनाने हैं तो आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको बायर सेलर लीड्स देंगे और आपको जो है वन ऑन वन सेल्स एंड मार्केटिंग मेंटरशिप दी जाएगी। तो मतीन साहब को कॉल कर लें 8647885-6655। और जनाब अच्छा और सेहतमंद खाना खाना है तो नान एंड कबाब पे जाएं, इनकी न्यू लोकेशन जो है अब 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 के ऊपर है, वहां जाएं। और उनको जाने से पहले कॉल भी कर सकते हैं 9052829797। और जनाब ये जो हमारे पास नई सुपरमार्केट आई है मेमन मार्केट, इसके ऊपर आप जरूर जाएं, आपको बहुत सारे इसके ऊपर गुडीज मिलेंगे। तो आप चीजें जो है बड़ी सस्ती हैं यहां पे, तो आप उसमें जाके अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकते हैं। सॉरी मेमन नहीं, मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी, ये जो है अब खुलने वाला है तो इसमें काफी आपको चीजें सस्ती मिलेंगी, तो आप जाके स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं। इनका नंबर है 9052861998। ओके जी, पाकिस्तान के अंदर जी आईएसपीआर की एक प्रेस रिलीज आई है और इसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो सब लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और होल्ड कर लेते हैं बहुत सारे डॉलर्स और उसकी वजह से डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो इसके खिलाफ जो ये जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो हम क्रैक डाउन कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ये आज बात कर रहे थे प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी ऑफ पंजाब में और इनके साथ बैठे हुए थे पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब। इन्होंने आज इनको जो लाहौर कॉर्प्स कमांडर है उन्होंने पहले इनको रिसीव किया था और फिर उसके बाद ये सारी चीजों के ऊपर ब्रीफ किया था। इसके अलावा उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट और गैस थेफ्ट और होर्डिंग और फॉरेन करेंसी स्मगलिंग के बारे में बताया गया। तो उन्होंने इस फोरम पर बात करते हुए कहा जी कि अंडर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टमेंट, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और अंडर ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव हम इन चीजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे और यहां पे प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे। इसके अलावा इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकातें बिजनेसमैन जो थे उनके से लाहौर में हुई थी और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डॉलर एक्सचेंज और इंटर बैंक रेट्स जो हैं उनको हम इंश्योर करेंगे ताकि पंजाब के अंदर प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी ऐसे ही जारी रहे। राणा सनाउल्ला, आपको पता ही है माजिद भाई के बड़े फेवरेट हैं राणा सनाउल्ला। राणा सनाउल्ला ने आज एक दफा फिर से कहा है जी कि हर वो बंदा जिसने कि इस कंट्री को क्राइसिस में धकेला है क्या हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। हम डिमांड करते हैं कि उन तमाम जर्नैलों और जजेस के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। उन्होंने लास्ट वीक भी आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जनरल कमर बाजवा और फॉर्मर ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब जो हैं वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए जो हैं वो हैं उनका काम है। तो ये आज राणा सनाउल्ला साहब एड्रेस कर रहे थे PMLN की कंसल्टेशन कमेटी को मीटिंग में गुजरांवाला में। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ये जो तीन दफा गवर्नमेंट्स को डिसमेंटल किया गया है उसकी वजह से इस क्राइसिस में चला गया है। 2017 में भी नवाज शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई किया गया था पैनामा पेपर्स केस में। तीसरी बार नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाला गया था जो कि मुल्क एक डगर पे चल रहा था और तमाम सिस्टम जो है उसको खराब किया गया। तो इसके अंदर ना सिर्फ जर्नैल बल्कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिसेज ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और आसिफ खोसा साहब थे तो वो भी इसके अंदर शामिल थे, तो उनको भी खींचना चाहिए उनके क्राइम्स के लिए क्योंकि ये क्राइम्स जो हैं मर्डर से भी बड़े हैं। उन्होंने कहा ये जो इनजस्टिसेज हैं उसके लिए इनको पार्डन नहीं दिया जा सकता। लेकिन PPP के जो लीडर हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने इनको कहा कि राणा सनाउल्ला साहब आप कन्फ्रंटेशनल जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ ना जाएं क्योंकि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। लेकिन राणा सनाउल्ला कहां सुनते हैं जी। उन्होंने कहा जी कि नहीं, नवाज शरीफ साहब जो हैं अक्टूबर 21 को वापस आएंगे और इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। और आपको पता ही है कि सेल्फ इम्पोज एक्साइल में है लंदन में क्योंकि वो कहते हैं जी मेरी तबीयत खराब है, सिंस नवंबर 2019 वहां पे रह रहे हैं। लेकिन अब राणा सनाउल्ला साहब कहते हैं जी कि वो अक्टूबर 21 को आएंगे और मीनारे पाकिस्तान पे आके खिताब करेंगे। ब्लूमबर्ग की आज एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है और ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट इसलिए मैं कोट कर रही हूं क्योंकि और अगर किसी अदारे की होती तो हम ये बात ना मानते, लेकिन चूंकि ब्लूमबर्ग इसके बारे में बात कर रहा है तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर की जाए क्योंकि जाहिर है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करते हैं। उनके मुताबिक चूंकि रीजन की और ग्लोब की दूसरी करेंसीज जैसे कि थाई भात और साउथ कोरिया की वॉन और बाकी कुछ और एजेंसी और करेंसीज दुनिया की अच्छा नहीं कर रही तो पाकिस्तानी रुपी अच्छा करेगा इस साल। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है जी। तो ब्लूमबर्ग कहता है जी रुपी हैज ऑलरेडी इंक्रीज इज अपनी वैल्यू में इंक्रीज किया है 0.1% टू 287.95 पर डॉलर और जबकि ये स्लाइड कर गया था इससे पहले 307 रुपीज के ऊपर अगेंस्ट डॉलर। तो वो कहते हैं जी कि चूंकि ये बाकी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं और चूंकि अब इंटरिम गवर्नमेंट क्रैक डाउन कर रही है इलीगल डॉलर ट्रेड के ऊपर तो रुपी जो है पाकिस्तानी रुपी वो अच्छा करेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हवाला और हुंडी ट्रेड जो है उसके ऊपर भी क्रैक डाउन कर रही है तो डॉलर का रेट जो है वो काफी रिवर्स जो है वो होता जा रहा है। और इसके खिलाफ जो है आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बात की कि जो होल्डर्स और एक्सपोर्टर्स हैं जो कि गलत तरीके से ये काम कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं डॉलर्स उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो ब्लूमबर्ग कहता है कि FIA ने ये जो रेड्स की हैं इस वक्त ये डॉलर के खिलाफ जो लोग जो होर्डिंग कर रहे थे और प्लेन क्लोज में भी लोग जो है मनी एक्सचेंज के बाहर खड़े हुए हैं देखने के लिए कि ये कोई भी इस तरह का गलत काम ना हो उसकी वजह से जी पाकिस्तानी रुपी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी एंड इट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग पाकिस्तानी रुपी इज गोइंग टू बी द टॉप परफॉर्मर ग्लोबली। ठीक है जी, तो ऐसे है। हिंदुस्तान के अंदर जनाब जो मणिपुर है उसके अंदर बदबख्तियां जो हैं उसी तरह चल रही हैं और आज जो एक पूरी की पूरी एक फैक्ट फाइंडिंग एक टीम बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके अंदर बड़ी स्केथिंग किस्म की वो रिपोर्ट आई है क्योंकि उन्होंने कहा है जी कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना सिर्फ इनकी स्टेट गवर्नमेंट बल्कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंटर की गवर्नमेंट जो यानी कि जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो भी डिवाइड एंड रूल जो है इनके बीच में मैटिस और कुकीज के बीच में खेल रही है। उसकी वजह से ये जो 8 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग टीम जिसने के अगस्त 10 और 14 के बीच में ये सारे फैक्ट्स कलेक्ट किए थे उन्होंने कहा जी कि ये सारे के सारे जो हैं जिम्मेदार हैं यहां पे जो वायलेंस हुई थी और वो जो कंटिन्यू वायलेंस जो है यहां पे करी जा रही है। उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा जो था ये जो मिठाई ग्रुप है इसने इसको किया था ऑर्केस्ट्रेट किया था जिनको कि स्टेट की जो है शाबाजी हासिल है और ये जो ग्रुप थे ये थे अंबाई तनगोल और दूसरा था मिठाई लीपुन और ये जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के हुक्म से तकरीबन सपोर्ट से तकरीबन जो कि आती है अंडर यूनियन गवर्नमेंट, बहुत अरसे से जो है कुकी के अगेंस्ट ये सारा कुछ कर रहे हैं और इसके अंदर जो है इसको कॉम्युनल जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको हवा दी जा रही है। तो इसलिए फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कही है, कहा है कि ये जो बीरन साहब की यहां पे हुकूमत है मणिपुर में, ये बिल्कुल अपनी लेजिटिमेसी खो बैठी है। अगर वो अपने ही बंदों को अपने ही बंदों के खिलाफ करके लड़ा रही है तो उसको कंटिन्यू करने का बिल्कुल भी कोई हुक्म नहीं है, मतलब है कोई हक नहीं है। दिल्ली की जो आज कोर्ट है, क्योंकि आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में कुछ कोर्ट्स जो हैं अभी भी जरा मेरिट पे काम करती हैं, दिल्ली की कोर्ट ने आज कहा जी कि दिल्ली के अंदर जो 2020 में रायट्स हुए थे उसके अंदर दिल्ली की पुलिस ने बिल्कुल ठीक से काम नहीं किया। हालांकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस जो है इट इज राइट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि ये आती है अमित शाह जो कि राइट हैंड मैन हैं मोदी जी के, उनके अंडर आती है। तो उन्होंने कहा जी कि दिल्ली की पुलिस ने बिल्कुल सही से काम नहीं किया था, 758 FIRs लिखाई गई थी और तकरीबन 53 के करीब लोग जो थे मरे थे, 700 के करीब बहुत ज्यादा इंजर हो गए थे और राइट्स जो थे चार दिन ये जो चलते रहे थे फरवरी 23 से 27 2020 के बीच में, इसके अंदर दिल्ली की पुलिस ने फैब्रिकेटेड एविडेंसेस जमा की, शॉडी प्रोब किया और कोई उसके अंदर लॉजिक नहीं था जिस तरह से वो चीजें जो है कर रहे थे। सिर्फ सीसीटीवी देख रहे थे, उसमें प्रोब नहीं कर रहे थे कि सीसीटीवी में कौन लोग हैं, बस कोई भी जो उससे मिलती जुलती शक्ल का होता था उसको पकड़ के ला रहे थे और उसके ऊपर हमें कह रहे थे कि वो चलाया जाए, एक प्रोब चलाई जाए। तो इसलिए बिल्कुल गलत जो था और लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे, दे वर पुटिंग देम बिहाइंड बार्स और फिर उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही थी फॉर मंथ्स, और कुछ लोग तो अब वहां पे सालों से जेल में बैठे हुए हैं, यानी कि 2020 के बाद से जब से उनको पकड़ा हुआ है और उनके ऊपर जो है बहुत सारा मेंटल टॉर्चर, दूसरा टॉर्चर किया गया है। तो दिल्ली की पुलिस को आज उन्होंने बहुत ज्यादा खींचा और इसमें जाहिर है कि सेंटर भी खींचा गया, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली की पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो आज कोर्ट्स ने काफी इनको खींचा, उन्होंने कहा जी कि ये राइटिंग, आर्सन, अनलॉफुल असेंबली के खिलाफ जो आपने एक्शंस लिए थे और जो आपने प्रोब की थी ये बिल्कुल गलत किस्म की और शॉडी प्रोब आपने की है, कोर्ट्स ने आज ये वर्ड यूज किए। आज है जनाब सितंबर 28 और आज लता मंगेशकर जी जो है उनकी 94th बर्थ एनिवर्सरी है, अगर वो जिंदा रहती तो। उनकी डेथ जो थी 92 ईयर्स की एज में फरवरी 6, 2022 में हुई थी, लेकिन आज उनकी बर्थडे के मौके पर मोदी जी ने उनको याद किया, कहने लगे कि रिमेम्बरिंग लता दीदी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी एंड हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। इसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जो हैं उन्होंने भी उनको बड़ी श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा जी कि उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी से हम बड़े इंप्रेस होते थे, और इसके अलावा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है और बाकी उनके चाहने वाले जो हैं उन्होंने भी आज उनको याद किया। एक स्टील ब्रांड है जी, उसको अब एंडोर्स कर रहे हैं आलिया भट्ट और रणवीर कपूर, लेकिन 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 इस एड के अंदर नजर आ रहे हैं शाहरुख खान साहब भी उनके साथ। इन तीनों ने जो है मैचिंग ब्लैक आउटफिट्स पहने हुए हैं और ये न्यू कमर्शियल जो है रणवीर सिंह की आज बर्थडे थी उस मौके पे ये रिलीज किया गया था, लेकिन ये जो है सारे का सारा इंस्पायर्ड है, ये जो इसकी मूवी है शाहरुख खान की जवान उससे, और इसके अंदर जो ट्रैक है वो भी जवान थीम से इंस्पायर्ड है। वो ट्रैक जो है वो बोलता है आरके यानी कि रणवीर कपूर का है वंडर, आलिया है शो स्टॉपर और रंगटा स्टील्स का किंग खान है जस्ट लाइक थंडर। तो लोगों को ये बड़ा पसंद आ रहा है और ये जो है, लेकिन वो एड खत्म होता है, पिक्चर अभी बाकी है, विच मीन्स कि इसका लॉन्गर वर्जन अभी एड का आएगा। और आपको पता ही है कि ये 2017 की शाहरुख खान की बड़ी आइकॉनिक मूवी जो आई थी ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख खान कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो उससे ये इन्होंने जुमला लिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है पे वो रुक जाते हैं, मेरे दोस्त नहीं कहते हैं। और जनाब आज आलिया भट्ट ने अपने हस्बैंड रणवीर कपूर साहब को विश किया, इंडस्ट्री ने भी उनको उनकी बर्थडे पे विश किया। आज रणवीर कपूर साहब ने अपनी 41st बर्थडे मनाई। इस मौके पे आलिया भट्ट ने बहुत सारी जो उनके न्यूयॉर्क और बाकी जो जगहों पे वकेशन की और फिर अपनी शादी की और बहुत सारी रैंडम पिक्चर्स जो हैं और एक बेसबॉल मैच की और जो मैचिंग इन्होंने टी शर्ट्स पहने थे, उसने आलिया ने जो है वाइट टी शर्ट पहना था और इसी तरह रणवीर ने, तो बहुत सारी मिली जुली तस्वीरें और एक 8 सिंबल नजर आ रहा है उसके सामने ये खड़े हैं और मोनोक्रोम कुछ पिक्चर्स, तो बहुत सारी उन्होंने आज शेयर की और इनको बहुत सारी प्यारे प्यारे मैसेजेस अपने हस्बैंड को दिए। पाकिस्तान के केयर टेकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जी जलील अब्बास जिलानी साहब, उन्होंने आज बड़े गुस्से का इजहार किया है क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस जो कि वर्ल्ड कप देखने के लिए न्यू दिल्ली जाना चाहते हैं उनको वीजे नहीं दिए गए हैं अलेजली उनके मुताबिक। तो उसके ऊपर जो अब्बास जिलानी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि ये अकॉर्डिंग टू आईसीसी रूल्स बिल्कुल रूल्स की खिलाफ वर्जी है और जो पाकिस्तानी फैंस दुनिया में जब भी कभी वर्ल्ड कप्स होते हैं तो हर मुल्क जो है वीजे देता है फैंस को उसके मुल्क में आके मैचेस देखने के लिए। ये जो इवेंट है आपको पता ही है वर्ल्ड कप जो है ये शुरू ओडीआई वर्ल्ड कप आईसीसी का अक्टूबर 5 को इंडिया में शुरू हो रहा है। तो आज जिलानी साहब ने कहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानीज ने वीजे के लिए अप्लाई किया था जो उनको नहीं दिया गया था। इवन जो पाकिस्तानी स्क्वाड था उसको लास्ट नाइट आफ्टर अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो वीजा जो है इशू किया गया था। तो वो कहते हैं जी कि ये मैं अब बात जो है आईसीसी तक लेके जाऊंगा और उनसे मैं पूछूंगा कि क्यों पाकिस्तानी फैंस को वीजा नहीं दिया जा रहा है। इस मौके पे जर्नलिस्टों ने इनसे ये भी पूछा कि जी सी पैक जो है पाकिस्तान का कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि हम इसको रोल बैक करें, ये ऐसे ही चलेगा। पीसीबी ने जनाब आज मैसिव हाइक्स जो हैं मंथली रिटेनर फीस जो हैं उसके अंदर अनाउंस की हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो हैं पैसे दिए जाएंगे बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी और मोहम्मद रिजवान को 20% इंक्रीज इनको कहा है। तो एज अ रिजल्ट ये कैटेगरी ए में आते हैं ये और इनको मिलेगा 4.5 मिलियन ओवर जो है द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज 3 ईयर्स पर मंथ, और ये जो है 4-fold इंक्रीज है ओवर 2022। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमने ये जो सक्सेसफुली 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ 25 और जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी किया है, तो ये रन करेगा फ्रॉम जुलाई 1, 2023 से June 30, 2026 तक। और इसके अलावा इसके अंदर जो बी कैटेगरी में आते हैं वो है फखर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शादाब खान, जिनको के दिया जाएगा 3 मिलियन। इमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो सी कैटेगरी में आते हैं और उनको 1.5 मिलियन मिलेगा। कैटेगरी डी में जो हैं वो हैं फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तखार अहमद, एहसानुल्ला, मोहम्मद हैरिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, आगा सलमान, सरफराज अहमद, साउद शकील, शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर, जमान खान, इनको 750,000 पर मंथ दिया जाएगा। और फीस जो हैं वो टेस्ट के लिए भी 50% इंक्रीज की गई हैं, 25% ODIs के लिए, 12.5% T20 मैचेस के लिए, और इसके अलावा उनको लिबर्टी दी है जो प्लेयर्स हैं उनको कि वो 2 फॉरेन लीग्स पर सीजन खेल सकते हैं और के लिए खेल सकते हैं और हर 12 महीने में इनका ये सारा कुछ रिव्यू होगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट श्रीलंकन क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका, 32 ईयर्स इनकी एज है। आपको पता ही है कि इनके ऊपर जो है सेक्सुअल असॉल्ट के कुछ केसेस आ गए थे सिडनी के ऊपर, जिसमें कि कहा गया था कि इन्होंने एक लड़की के साथ बगैर उसकी मर्जी के विदाउट एनी कंसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी में इसके साथ दाखिल हुए थे। पहले जो 3 केसेस थे जब इनको अरेस्ट किया था नवंबर में लास्ट ईयर, और तो वो 3 केसेस जो थे वो तो पहले ही ड्रॉप हो गए थे क्योंकि उसके अंदर कुछ एविडेंसेस नहीं मिली थी उस औरत से जिससे कि ये मिले थे सिडनी ओपरा हाउस के पास थ्रू एन ऐप, डेटिंग ऐप। और फिर मई में ये ड्रॉप होने के बाद आज जो जज सारा हगेट हैं उन्होंने कहा जी कि आज ये चौथे केस में भी मैं इनको गिल्टी नहीं मान रही हूं क्योंकि आप एविडेंसेस पूरी नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि वो औरत जो है वो मिक्स जो है वो दे रही है, आंसर्स दे रही है, शी इज नॉट क्लियर अबाउट व्हाट हैपेंड और कंस्पायर्ड देयर। तो ये बड़े खुश हैं, ये कहते हैं जी कि अब मैं क्रिकेट की तरफ फिर से लौटूंगा। इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था 2015 में और अभी तक 8 टेस्ट और 47 ODIs और 46 T20s खेल चुके हैं, तो इन्होंने आज साई ऑफ रिलीफ लिया है।
गुड फॉर हिम, गुड फॉर हिम।
वो कहते हैं कि मेरी टीम जो थी उसको तो हमेशा से पता था कि मैंने ये इस तरह का कोई गलत काम नहीं किया है कंसेंट के बगैर।
बहुत सारे लोग जो है ना शाहजी जी फॉर फेम ये करते हैं,
यस 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 एब्सोल्यूटली,
फॉर मनी से कि मॉनेटरी इसमें होता है कि भाई
हम डरा देंगे, हम उसको डिफेम कर देंगे तो वो हमें लंबा पैसा देके चुप कराने की कोशिश करेगा।
सो ये देयर आर 2 थिंग्स, एक तो नाम कि भाई मेरा हर जगह पे नाम आएगा, हर जगह पे नाम आएगा, मेरे इंटरव्यूज लोग ले आएंगे, मेरे हो सकता है मैं किताब लिख दूं इस पे, हो सकता है मैं
मिलियंस कमाऊं, फिर
या मिलियंस कमाऊं। एंड देर आर पीपल के भाई आपको जब डरा दिया मैंने तो अब हाँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो
हाँ, और इतने मिलियंस दो ताकि फिर
आई एम ग्लैड दैट ही डिडंट डू इट,
क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मेरी टीम को भी पता था, मेरे घर वालों को भी पता था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, कंसेंट के बगैर मैंने कुछ नहीं किया।
देयर यू गो, तो कंसेंट इज मस्ट।
हाँ जी,
ये थी हमारी आज की न्यूज। अब से कुछ ही देर बाद आप की बातचीत होगी सलमान अहमद साहब से, कुछ बताइए
जी सलमान से मेरी बात जो हुई थी आज बड़े अरसे से मैं उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट ही वॉज वेरी बिजी. तो उन्होंने आज बहुत सारे फॉर द फर्स्ट टाइम 770 के ऊपर बहुत सारे रेवलेशन किए हैं जो आज तक आपने सुने नहीं होंगे अपने बैंड के बारे में, अपने कॉन्सर्ट्स के बारे में, और जो उनके कोई क्या फिल्में बन रही हैं उनके ऊपर, क्या उनके क्या कुछ हो रहा है वो सब उन्होंने बताया. और इसके अलावा आपको पता ही है कि जो इमरान खान साहब के साथ भी बड़ा क्लोज थे. अब ये भी बड़ा राज है कि इमरान खान से वो क्लोज कैसे हुए और किस एज में हुए और क्यों हुए, ये भी बड़ी रेवलेशन है. तो इतनी रेवलेशन हैं आज के इंटरव्यूज में जो इससे पहले आपने कभी भी कहीं पे भी नहीं सुनी. सो इट इज एन एब्सोल्यूट एक्सक्लूसिव टू 770 AM रेडियो जो कि आप आज सुनेंगे और हमारे टीवी पे भी देख सकेंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हमारी वेबसाइट पे भी हर जगह पे ये फ्लैश होएगा इंटरव्यू. तो आज बहुत इंटरेस्टिंग है. तो जो इमरान खान साहब की स्ट्रगल है उसके बारे में भी, उनके जो है कुछ क्रिकेटिंग डेज के बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में और क्या क्या कुछ हो रहा है वो सब आज आप सुनेंगे. आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट. हां, ज्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहती. आप सुने तो आपको बहुत मजा आएगा और फिर आप जो है डॉट्स कनेक्ट कर सकेंगे,
सारे डॉट्स कनेक्ट कर लेंगे, यू कम टू योर ओन कंक्लूजन.
एग्जैक्टली. और आप सोचेंगे कि एक सिंगर है तो ये मतलब व्हाइट हाउस तक भी कैसे पहुंचा हुआ है, वो क्या चक्कर है, कांग्रेस मेंबर से कैसे बात कर रहा है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बातें कर.
एग्जैक्टली 6:30 पे आप ये सुन सकेंगे, एग्जैक्टली 6:30 पे सुन सकेंगे और देख सकेंगे हमारे टीवी पे और हमारे रेडियो पे सुन सकेंगे. मगरिब की अजान का सेगमेंट होगा 7:07 पर आज शाम को, और इसके बाद फिर 7:30 पे भूली बिसरी यादें ट्रिब्यूट टू मिक्स आर्टिस्ट जनाब लियाकत मलिक साहब आपके लिए पेश करेंगे. तो सुनना देखना ना भूलिएगा, हमारे साथ रहिए. फिलहाल मैं लिए चलता हूँ आपको कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम की जानिब, उसके फौरी बाद आपकी बातचीत सलमान अहमद साहब से. थैंक यू सो मच.
थैंक यू मच. वी विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह.
बाकी की बातें कल शाम को इंशाल्लाह ताला इसी टाइम पे आपसे मुलाकात होगी. उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज.
Under 12, earn less than $90,000 a year and do not have private dental insurance, you may be eligible for the new Canada Dental Benefit. You could get a direct payment of up to $650 per child for dental care. Now that's something to smile about. To learn more, visit canada.ca/dental. A message from the Government of Canada.
Real estate di duniya vich thodi kamyabi executive homes realty jithe tusi 1.5 lakh to 2 lakh saal da kama sakde ho. Is to alawa free buyer and seller leads, a VIP access to pre construction projects, one on one sales and marketing mentorship, teach and train program, state of art modern office with private room, in house mortgage and lawyers team, in house projects investment opportunity. Fir der ka di aao te join karo executive homes realty ya call karo 905-890-1300 ya visit करो ehrb.ca.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਵੀਂ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ 2023 ਦੀ ਫੋਰਡ ਐਸਕੇਪ ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਔਰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ 13 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.99% ਦਾ APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਟ 2023 ਐਸਕੇਪ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਲਓ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ ਆਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com QTL ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ.
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए. आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं. राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਡਟਦਾ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ।
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਨ ਸਟੇਜ 12 ਸੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰ ਅਹਦ ਰਜ਼ਨੀਫ ਕੋ ਹੈਮਲਟ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇ ਦੇਖ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਹੈਮਲਟ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੇ ਦੌਰ ਕੇ ਲਿਏ ਗਜ਼ਬਨਾਕ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ, ਇੰਤਕਾਮ ਔਰ ਦਾਗਦਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਇੱਜ਼ਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪਾਗਲਪਨ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਈਨ ਪਰ ਚਲਨੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਯਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾ ਸਾਨਿਆ ਹੀ ਲਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਮਤ ਭੁਲੀਏਗਾ ਹੈਮਲਟ 12 ਸੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇ। सेल टिकट्स खरीदने के लिए विजिट करें brampton-onstage.ca।
770 AM ਦੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾ ਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com। ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.
Hello and welcome to a very special segment of an interview with a personality jinka ke naam abhi jab main lungi to aap khud bhi jhoom uthenge. Wo aisi personality hain, badi towering personality hain jinhone ke Pakistan ke andar na sirf music ki duniya mein bahut kaam kiya balki aur bhi jo different sectors hain unke andar unka aur unki wife ka बहुत बड़ा जो हम कहते हैं योगदान है। तो उनसे आज हम बात करेंगे और ऑफ कोर्स उनसे कुछ इस सिलसिले की भी बात होगी जो उनके बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट्स जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर थे इमरान खान साहब, उनके साथ उनकी जो बहुत ही क्लोज अफिनिटी थी, तो उसके बारे में भी और उनके म्यूजिक के और उनके जो दूसरे ह्यूमैनिटेरियन वर्क है उनके बारे में आज हम एक ऑल एनकम्पसिंग इंटरव्यू उनसे लेने वाले हैं। हमारे साथ हैं नन अदर देन द वेरी हैंडसम एंड टैलेंटेड सलमान अहमद। सलमान, हेलो, हाउ आर यू?
शुक्रिया शाजिया, थैंक यू, आपने बड़ा वार्म वेलकम दिया, शुक्रिया बहुत बहुत आपका और आपके रेडियो स्टेशन का।
नो, यू डिजर्व इट एब्सोल्युटली। अच्छा तो सलमान, पहले तो हम यही शुरू कर लेते हैं कि आप मेन कॉन्टेक्ट पर्सन थे ऑन कल्चर फॉर प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर थे इमरान खान साहब, उनके लिए, तो आप जरा बताइए कि इन दैट रोल आपका काम क्या था?
जी, for Prime Minister Imran Khan and Chairman Imran Khan PTI. دیکھیں میں first of all ناظرین سامعین جو نہیں جانتے نا, میں نے خان صاحب کے ساتھ شروع جو میرا سفر ہوا تھا نا, وہ میں جب میڈیکل کالج لاہور میں تھا نا, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں, تو اس وقت میں کرکٹ کھیلتا تھا اور خان صاحب تھے پاکستان ٹیم کے کرکٹ کیپٹن, انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا بنگلہ دیش جانے کے لیے. تو جب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں کوئی 20-21 سال کا تھا نا, جب سے میں خان صاحب کو جانتا ہوں. اور پھر کرکٹ انہوں نے جب اپنا ہسپتال بنایا ایس کے ایم ٹی, اور پھر جب پی ٹی آئی میں 27 سال پہلے آئے, تو میں پہلے وائٹل سائنس میں آپ کا جنید جمشید کے ساتھ تھا, پھر میں نے جنون شروع کیا. تو اس سارے سفر میں خان صاحب کے ساتھ ایس کے ایم ٹی کے لیے فنڈ ریزنگ, ان کے اور نمل ادارے کے لیے فنڈ ریزنگ, اور پھر جب یہ سیاست میں آئے تو ایز این ایڈوائزر, میں کیونکہ رہتا تو میں امریکہ میں ہوں لیکن کیونکہ میں یو این گڈ ویل امبیسڈر ہوں نا شازیہ, تو میرے یہاں کوریڈورز آف پاور میں بڑی اچھی ریلیشن شپ پچھلے 20 سال میں بنی ہے. تو خان صاحب کے لیے میں بیہائنڈ دی سینز ہیلپ کر رہا تھا. جب انہوں نے مجھے فوکل پرسن بنایا آرٹس اینڈ کلچر کا, تو پوری پاکستان کے لیے ایک ویژن, 10 سال کی ویژن جو ہے وہ میں ترتیب دے رہا ہوں اس وقت.
Oh, ہم نے تو آج تک یہ ریولیشنز جو آج آپ نے کی ہیں ہم نے اس سے پہلے سنی نہیں تھی کہ آپ ان کو کنگ ایڈورڈز کے زمانے سے جانتے ہیں. اچھا, دیٹس ونڈرفل ٹو نو. اوکے, تو آپ جو جب انہوں نے آپ کو گڈ ول امبیسڈر بنایا اس کا کلچر پہ, تو آپ کا وہی جیسے میں نے پہلا بھی کوشچن کیا تھا, تو آپ کا مین کام اس کے اندر کیا تھا, آپ نے اس کے اندر کیا اچیو کرنا تھا, کیا ٹارگیٹ آپ کو دیا گیا تھا اور پھر آپ کیا سکسیزفل رہے اس کو لانے میں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ہیں بہت ٹیلنٹڈ لیکن دنیا کے میں کہیں زیادہ نظر نہیں آتے ہیں جیسے کہ हॉलीवुड में ज्यादा नजर नहीं आएंगे, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है खासतौर पे नॉर्थ अमेरिका की एंड एज सच जो ग्लोबल स्केल के ऊपर बहुत एक दो नाम कोई नजर आएंगे। तो आप जैसे कि आपने कहा कि आपका बहुत ही आना जाना था जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर है, तो फिर कैसे कुछ पुश किया इसके लिए और कुछ चीजें आई सामने?
जी शाजिया, तो मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, यूएन गुडविल एम्बेसडर मुझे यूनाइटेड नेशन अकवामे मुत्तहिदा ने बनाया था, ठीक है, और खान साहब ने फोकल पर्सन आर्ट्स एंड कल्चर का, ये दो फर्क चीजें हैं।
जी नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी जो पोजीशन है उससे आपने पाकिस्तान के लिए क्या फायदा उठाया इस फील्ड में, मैं दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू।
ओके, कि मतलब कि जो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप देखेंगे, मैं अगर अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाहता, लेकिन जब मैंने आगाज किया डॉक्टरी करके, जब फनून लतीफा में कदम रखा, तो दिल दिल पाकिस्तान पहली जो तराना था और जुनेद जमशेद रुहेल शहजाद के साथ जो पहली एल्बम वाइटल साइंस की थी वो पेश की, वो शुएब मंसूर साहब जो हमारे बड़े मेंटोर हैं उन्होंने सारे उसके बोल लिखे, और वो आगाज था मेरा आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर। और वो उसकी वजह से फिर सारी दुनिया में जहां भी आप जाते हैं ना शाजिया, अगर आप टोरंटो में हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं या न्यूयॉर्क में या लॉस एंजलिस में या लंदन में, पूरे पाकिस्तानी जहां भी हैं, जितने भी जनरेशन के, वो दिल दिल पाकिस्तान का पैगाम जो है उनके दिलों में है। क्रिकेट जब वर्ल्ड कप होता है वो सारे तरानों वहां चलता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब जुनून में आया तो जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी, जज्बा जुनून जैसे तराने, और बेस्ट इंटरनेशनल ग्रुप अवार्ड जुनून को इंडिया में मिला हमें। ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तानी एक जो रॉक ग्रुप है उसकी ये अचीवमेंट है। और अभी 6 अक्टूबर को शाजिया हम दुबई में, हम कोको कोला अरीना में जुनून जो है वो एक कॉन्सर्ट करने जा रहा है। नाउ इससे हटके मेरी जाती, ये तो मैं बायोग्राफी है, इससे हटके मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है। देखिए कितने बड़े बड़े नाम है, नुसरत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, अगर आप मैडम नूर जहान, आबदा परवीन, हमारे अगर आप रॉक बैंड्स में आ जाएं तो वाइटल साइंस, स्ट्रिंग्स, ये आतिफ असलम, जल और नूरी, बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो जब मैं खान साहब का फोकल पर्सन आर्ट्स एंड कल्चर का था और हूं, तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि हमारे जिस तरह इंडिया में बांग्लादेश में एक बजट जो है वो आर्ट्स एंड कल्चर के लिए रखा जाता है कि फिल्म्स, टीवी, स्टेज प्लेज, म्यूजिक, पोएट्री, आर्ट के आर्टिस्ट को आप इंसेंटिव देंगे ना पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, तो वो आपके लिए, अब देखिए हमें तो बगैर किसी मदद के, बगैर किसी ऑफिशियल सपोर्ट के सारी दुनिया में खुद ही नाम फैलाया है ना पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने। तो मेरी विजन ये है कि अगर एक गवर्नमेंट जो है अपने सॉफ्ट इमेज को सारी दुनिया में स्ट्रॉन्ग करना चाहती है तो वो आर्ट्स एंड कल्चर के पीछे लगे। और हमारे जिस तरह अलामा इकबाल, फैज अहमद फैज और हबीब जालिब, फिर हमारे जो सुफियाना कराम जिस तरह बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, उनकी जो खिदमात हैं, उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान की सकाफत में, तो उसको उजागर किया जाए ऑफिशियल लेवल पे, फिल्म्स बनाई जाएं, टेलीविजन पे प्लेज उस पे हों और वगैरह वगैरह।
जी अच्छा सलमान, आप लोग जो हैं, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा, इतनी टावरिंग पर्सनालिटी है और जुनून बैंड, तो उसने तो क्या जुनून दुनिया के अंदर पैदा किया था। अब अगर कोई इंटरनेशनल फिल्म मेकर आपके पास आए और आपसे कहे कि आपका ये जो सारा जर्नी है इस पे हम फिल्म बनाना चाहते हैं, तो आप क्या उस पे राजी होंगे, नंबर वन? और उसके अंदर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान का क्या दिखाया जाए जिससे कि पाकिस्तान का बड़ा नाम हो जाए?
तो शाजिया, अगर आप देखें ना, अमेरिका के जो बहुत बड़ा चैनल VH1, ठीक है, उन्होंने जुनून पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री की, ठीक है। अच्छा, और फिर आपको पता है कि जो इंडिया की फिल्म थी ना रॉकस्टार,
वो रणवीर कपूर के साथ,
हाँ, जो उनका पूरी पर्सनालिटी थी ना, जो जो और जो पर्सोना था, वो उनके डायरेक्टर ने जुनून पे बेस्ड जो है उनको कहा कि आप उसी तरह तैयार हो और उसी तरह गिटार प्ले करें, उसी तरह वो सारा करें। तो इंडिया में ये भी बताऊं आपको कि जो जो जुनून का तरह ये है ना, सयोनी हमारी आजादी एल्बम का जो सॉन्ग है, सबसे ज्यादा दुनिया में वो और आर्टिस्ट ने जो रिकॉर्ड किया गया है वो इंडिया में है, और इंडिया की फिल्मों में है, साउथ इंडियन फिल्मों में भी है, बॉलीवुड फिल्मों में भी है, और उनके बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। उनकी फहरिस्त मैं नहीं अभी बताना चाहता, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाए ना और लिखें सयोनी, तो इंडिया, बांग्लादेश और चाइना, ये सबसे ज्यादा कवर्ड है सॉन्ग जो है सयोनी पाकिस्तान का।
ओह अच्छा, दैट्स वंडरफुल। आज का तो मुझे लग रहा है आज के इंटरव्यू का जो हमारा टाइटल होना चाहिए सलमान अहमद रेवलेशंस होना चाहिए। ये जो सारी आप बातें बता रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी और इंटरव्यू में हमने ये देखी है। दिस इज अमेजिंग, खासतौर पे जो आपने रॉकस्टार मूवी के बारे में बताया। बिल्कुल। तो लेकिन मेरा मेरा क्वेश्चन था कि मूवी जो आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर बने, तो आप उसको कैसे आगे लेके जाना चाहेंगे, यानी कि आपके अपने बैंड जुनून के ऊपर, ना सिर्फ ये कि एक डॉक्यूमेंट्री बल्कि आप प्रॉपर फिल्म बने, तो कैसे, यानी कि जाहिर है कि उसके अंदर तो इंडियन स्टार्स नहीं होंगे, फिर उसमें तो सारे पाकिस्तानी स्टार्स होंगे।
तो शाजी आपको एक और रेवलेशन देता हूँ
अच्छा
जो जो जुनून का यूट्यूब चैनल है ना, ठीक है, उस पे अगर आप जाएंगी तो उस पे लिखें तलाश, ठीक है, तो उसमें ये मैं बताऊं आपको कि मैं, अली, ब्रायन, आयशा ओकॉनल, अतीका ओडो, अनवर मकसूद साहब और शफी मोहम्मद साहब, एक पूरी स्टोरी है जुनून के ऊपर, तलाश
वाओ
ड्रामा।
अच्छा,
हाँ ड्रामा है पूरा।
ओह अमेजिंग। ओके, तो ये तो आप देखना ही पड़ेगा। तो ये दिस इज अनदर बिग न्यूज जो आप हमारे साथ ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा, दैट इज वेरी वेरी नाइस। अच्छा सलमान, थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। अभी मैं देख रही थी आपने कुछ लीड किए थे, कोई जो प्रोसेशंस थे वहां पे अमेरिका के अंदर खान साहब के लिए, जब उनको ऐसे उनकी उनको जो डिटेंशन दिया हुआ है अननेसेसरली, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि कुछ केस तो जब तक आपके ऊपर प्रूव ना होए आप किसी बंदे को ऐसे जेल में डाल नहीं सकते हैं, राइट? इट हैज टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो तो अभी तक नहीं है, फिर भी उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाया। तो आपको क्या लग रहा है, और जिस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि माइनस इमरान खान एंड माइनस पीटीआई इलेक्शंस होंगे, तो वो कैसे इलेक्शंस होंगे और कैसे आप एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर सकते हैं?
बहुत अच्छा सवाल है शाजिया। देखें, अगर आप 9 अप्रैल 2022, तकरीबन 18 महीने पहले की बात है ये, ठीक है, अगर आप उस वक्त पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान 6% मईशत की ग्रोथ पे था, जो डॉलर था वो
की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, यस।
बिल्कुल, और सारा आप चेक कर सकते हैं जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, कि जो डॉलर था वो 170 रुपए के लगभग, 170 178 के करीब था, ठीक है, और पाकिस्तान का वकार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्यादत के नीचे सारी दुनिया में जो था ना, एक इज्जत से देखा जा रहा था। OIC की जो कॉन्फ्रेंसेस दो हुई खान साहब के टर्म के दौरान, और खान साहब पूरी दुनिया में जो जहां मुसलमान है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए वो ये भी रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा सरे फहरिस्त लीडर समझे जाते थे। अब देखें कि जब ये साजिश की वजह से, और वो तो सामने आ गया है, अमेरिका का जो पेपर है इंटरसेप्ट, उसमें कहानी सामने आ गई कि साइफर में डोनाल्ड लू साहब ने पाकिस्तान के सफीर असद मजीद को कहा कि अगर तुम इमरान खान को गिरा दोगे, हटा दोगे, तो सब कुछ माफ कर देंगे, लेकिन अगर ना हटाया तो तुम पाकिस्तान के लिए हालात बुरे हो जाएंगे। तो ये साजिश में जो भी मुलव्वस थे सारे, उन्होंने पिछले 18 महीने के अंदर पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हमारी मईशत जो है बिल्कुल डिफॉल्ट के पास, हम मांग मांग के दुनिया के पास, IMF के पास जाके सजदा करके उनसे एक एक बिलियन या 1.5 बिलियन की स्टैंड बाय अग्रीमेंट ले रहे हैं, ठीक है। और कहां, आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो 1 करोड़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान को एक $145 अरब जो है रिमिट किया था, ठीक है, और अब जो है कुछ भी रिमिटेंसेस नहीं आ रही है और ये भाग रहे हैं इधर से उधर भीख मांगते हुए। और 200 जो आपने बिल्कुल सही कहा शाजिया कि 200 केसेस खान साहब के ऊपर जो बिल्कुल बेबुनियाद बोगस फिक्टिशियस केसेस हैं, और 5 अगस्त के बाद उनको एक टॉर्चर सेल में डाला हुआ है अटक और अडियाला के अंदर। और मुझे खतरा ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको घर से खाना भी नहीं आने दे रहे, उनकी डॉक्टर को भी जो मुलाकात है उसमें डॉक्टर ना ब्लड प्रेशर की एपरेटस अंदर लेके जा सकते हैं डॉक्टर फैसल, और ना ही थर्मामीटर। तो उनको एक दहशतगर्द की तरह से ना इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। तो ये किधर का इंसाफ है और ये किधर का सलूक है? पाकिस्तान में औरतें बच्चे उन पर तशद्दुद हो रहा है, एक अभी नन्ना मुन्ना 9 साल का अमार जो है वो शहीद हो गया, जिले शाह शहीद हो गया, अरशद शरीफ शहीद हो गए, इमरान रियाज खान जर्नलिस्ट जब अभी वापसी उनकी आई है, मेरी उनकी फैमिली से बात हुई है, वो बोल भी नहीं पा रहे सही तरह कि उन पर इस तरह का तशद्दुद किया हुआ है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक मार्शल लॉ है, फैशिस्ट स्टेट है, और हम कहते हैं कि ये खत्म हो और फ्री फेयर इलेक्शंस हो, उसकी डेट दें।
लेकिन सलमान वही तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि वो तो कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान ये सारा कुछ चलेगा, तो आप, मैंने वही क्वेश्चन था कि उसको खत्म करके पीटीआई को आप कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करा सकते हैं?
तो शाजिया मैं ये सवाल पूछता हूं कि आपने 18 महीने में, तो मैंने आपको बता दी ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% से दलदल में गिर गई, ठीक है, और कोई भी है पाकिस्तान को देखना भी नहीं चाह रहा, ना चाइना ना मिडल ईस्ट के, अभी ना जो है क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने सऊदी अरेबिया की नेशनल डे पे जो फिल्म, जो एडवर्टाइजिंग फिल्म जो टीवी पे चली, उसमें मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान को गले मिल रहे हैं। तो ये क्या ये बता रहे हैं कि हमारी नजर में जो पाकिस्तान का लीडर है वो इमरान खान है? अच्छा, और अमरीका ने कह दिया है, क्योंकि मैं तो यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट से और कांग्रेस से मेरी तफसील में गुफ्तगु हुई है, अमरीका ने कह दिया है कि फ्री फेयर इलेक्शंस टाइमली हो, तो इमरान खान माइनस कहां से? तो या तो कह देते इंटरनेशनल कम्युनिटी के जी के वो लीडर जिसकी 90% से ज्यादा मकबूलियत है उसको हटा दें और फिर फ्री फेयर इलेक्शंस। ये किधर की फ्री फेयर इलेक्शंस होंगे? वो कोई मानेगा? पाकिस्तान की आवाम जो है वो तो अभी बर्दाश्त में बैठी है कि इलेक्शंस होंगे और जाके अपना गुस्सा जो है वो निकालेंगे वोट देके।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अभी कल भी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी और जो खोकर साहब हैं उनके बीच में जो मीटिंग्स हो रही थी उसमें मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि जी हम तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब हमने जुलाई के अंदर एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट का हाथ पे तैयार करें कि क्या एक नई पार्टी लॉन्च की जा सकती है, तो हमें पता चला जाए कि हम तो कामयाब हो नहीं सकते क्योंकि 90% तक जो पॉपुलैरिटी है वो तो इमरान खान की है, तो पहले ही पार्टीज को शायद इतने वोट्स नहीं मिलेंगे, तो हम एक लॉन्च नई पार्टी करके क्या करेंगे, और जो उनकी की भी है एक नई पार्टी तो उसका आप हाल देख ही लें क्या हो रहा है। अच्छा सलमान, आप मुझे बताइए कि आपने अभी चूंकि खुद ही कह दिया तो मैं आपकी बात से ही वो थ्रेड उठाना चाहती हूं कि आपके मुलाकातें कांग्रेस के लोगों के साथ और स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ होते हैं, तो आपने उनसे बात नहीं किया कि भाई पाकिस्तान तो एक अपने ट्रैक पे चल रहा था और सारी दुनिया में खासतौर पे COVID-19 में जब इतनी मारामारी चल रही थी किस तरह उस आदमी ने पाकिस्तान को क्वैगमायर में से निकाल के अपने कंट्री को लाया जिसकी तारीफ सारी दुनिया ने की, तो आपने उस आदमी को जो कि इस न्यूक्लियर पावर वाले कंट्री को एक ट्रैक पे डाला हुआ था और ठीक से चल रहा था, आपने क्यों हटाया उसको? आपने पूछा किसी से वहां पे?
शाजिया, मैं आपको, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि मैंने क्यों जो स्टेट डिपार्टमेंट और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से गुफ्तगु शुरू की। 25 मई को मेरी बहन और मेरे बहनोई, उनके घर में 15 नामालूम अफराद आए बंदूकें लेके और घर तोड़ दिया।
और दिस इज इन लाहौर,
पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में हुआ, और तशद्दुद किया मेरी बहन के ऊपर, मेरे बहनोई के ऊपर, उनको कहा कि तुम्हारा भाई किधर है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, उसको कहो इमरान खान का साथ छोड़े और अपना ट्विटर पासवर्ड और ये इंटरव्यूज जो दे रहा है ना, ये बैनर कौमी जिस तरह आपका या आज चैनल है कि बंद करे, تو وہ انہوں نے تشدد کیا, اغوا کر کے لے گئے میرے رشتہ داروں کو. تو میں نے پھر کانٹیکٹ کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور سینٹ, سینٹ کے لیڈر چک شومر کو, اور میں نے یہ سارا کچھ بتایا. میں نے کہا میں پاکستانی امریکن ہوں, میری فیملی بھی یو ایس سٹیزنز ہے پاکستانی اوریجن کے ساتھ, اور ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں, مطلب میرے رشتہ داروں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ جو سیاست کے ساتھ, یا یہ جو 9 مئی کے بعد جو انہوں نے کہا تھا نا کہ 9 مئی میں آرسن پہ لوگوں کو جو پکڑ لیا جس کے اندر ختیجہ شاہ بھی ہیں اور بھی خواتین ہیں. تو انہوں نے بہت سیریسلی, کیونکہ دیکھیں ہم یو ایس سٹیزنز ہیں, میرے والدین یا سن جو 60s کے اندر آئے تھے, تو 60 سال ہو چکے ہیں میرے والدین کو یہاں آئے ہوئے. ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, اور جب میں کیونکہ گڈ ول امبیسڈر ہوں یونائٹیڈ نیشنز کا, تو میں نے کہا کہ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور آپ کو پتا ہے کہ شازیہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ کے کینیڈا میں ایک گردوارے میں ایک جو سردار جی نجر جن کا قتل
نجر
ہوا, اس کے آپ کے پرائم منسٹر جو ہے جسٹن ٹروڈو, انہوں نے کھلا جو ہے انڈیا کو اکیوز کیا ہے اور اخباروں میں یہ سب کچھ آ گیا. وہی چیز پاکستانی جو یہ فیشسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں یو ایس سٹیزنز آف پاکستانی اوریجن کے ساتھ. سو اس سے میری ان سے گفتگو شروع ہوئی. پھر کیا ہوا بیچ میں کہ مجھے کانٹیکٹ کیا کانگریس وومن میکسین واٹرز نے, اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتی ہوں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں نے اس کو پوری رپورٹ دی, پھر اس نے کہا کہ کیا تم میری بات عمران خان کے ساتھ کرا سکتے ہو. تو میں نے کہا میں درخواست دے سکتا ہوں. خان صاحب سے جب میں نے پوچھا تو 8 مئی کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں میکسین واٹرز کے ساتھ. اور شازیہ وہ سب باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ خان صاحب نے بتایا کہ میرے پہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں, ہماری خواتین کو اغوا کیا گیا ہے, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. اور آپ چیک کر لیں, اگلے دن 9 مئی کو شازیہ خان صاحب اغوا ہو جاتے ہیں. یہ جو پیراملٹری ٹروپس جو تھے نا, وہ تو ساری دنیا نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے خان صاحب کو اغوا کر لیا, ان کے وکیلوں پہ تشدد کیا, خان صاحب کے سر پہ ایک ڈنڈا مارا ایک فارمر پرائم منسٹر. اور پھر پاکستان کے چیف جسٹس جو سابقہ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال, انہوں نے رولنگ دی کہ یہ عمران خان غیر قانونی غیر آئینی طور پہ یہ جو ہے ان کو پکڑا گیا ہے 9 مئی کو. تو یہ سارے سامنے یہاں امریکہ کے اندر سانوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئیں, اور ہم نے 5.5 لاکھ ہم پاکستانی امریکنز ہیں, ہم نے ڈھنڈورا پٹانا شروع کر دیا. پھر یہ انٹرسیپٹ کی کہانی آئی جو یہاں کا اخبار ہے, جس کے اندر سائفر کا سارا کھل گیا. پھر ابھی آئی ایم ایف لون کے بارے میں سب کچھ پتا لگ گیا کہ بامبز فور بیل آؤٹس. سو جو آپ کا سوال ہے نا کہ یہاں کے لوگ جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ پتہ لگے, لیکن وہ سامنے آ رہا ہے. اور صرف ایک دیکھیں, یہاں جو بائیڈن پریزیڈنٹ نہیں ہے, ادھر سینٹ بھی ہے, ادھر کانگریس بھی ہے, ادھر میڈیا بھی ہے, یہاں آزاد سوچ کے لوگ ہیں اور وہ اب آواز اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں فری فیئر الیکشنز ہونے چاہیے.
جی اچھا, اب جو ہے سلمان آپ سے بات کر کے تو بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن ہمارا ہم وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تو بس میں آپ سے لاسٹ میں بالکل پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دو اب کوشچن ہیں میرے, کہ ایک تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو شاید وہ کوئی ان کو مشورہ دے دے کوئی پٹھے دماغ کا کہ جی اس کو مار دو, اگر ایسا کوئی انہوں نے اٹیمپٹ کیا تو پاکستان میں کیا ہوئے گا, اور نمبر ٹو اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کی کہاں پہ سٹینڈنگ ہوئے گی, آپ کا کیا رول ہوئے گا اس میں.
جی تو پہلا تو سوال آپ نے جو پوچھا ہے نا, اس کا میں جواب اس طرح کر کے دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان بالکل دلدل میں ہے, معاشی دلدل میں ہے, بالکل ٹوٹا ہوا ملک ہے, کوئی دنیا کی کوئی مدد نہیں کرنا ہے. ایک واحد لیڈر پاکستان کا جو پورے ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے, اور وہ پاکستان کے اندر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان سے ریمیٹنسز کے علاوہ انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب ہو سکتا ہے, پاکستان کی معیشت کو سٹیبلائز کر سکتا ہے, وہ عمران خان ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ خطرہ ان کو ہے قتل, تو جو سوچ رہے ہیں ایسے میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستانی تو نہیں ہو سکتے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو قتل کر دو. ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شخص جو پاکستان کو مضبوط کر سکتا ہے, سٹیبلائز کر سکتا ہے, اس کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈلی 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو فری فیئر الیکشنز جو ہیں وہ ہونا بڑا ضروری ہے. वो इसलिए जरूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, उसके साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और मेरा क्या रोल है? मेरा रोल यही जो मैं अभी आपके सामने हूं कि मैं पूरी दुनिया में ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ला कानूनियत है, जंगल का कानून है, जो ये जो है रूल ऑफ लॉ वो खत्म हो चुका है। खवातीन के साथ मतलब के उनकी तोहीन की जा रही है और ऐसा सलूक किया जा रहा है कि मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं सुना कि पाकिस्तानी खवातीन को इतनी बुरी तरह ट्रीट किया जाए। जेलों में बंद है और बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि 9 मई को 30 से ज्यादा जो हैं वो शहीद हो गए हैं लोग। तो अगर इन्होंने रोक इलेक्शन में इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की तो सिविल वॉर हो जाएगी पाकिस्तान में।
ओके, ऑलराइट सलमान, इट हैज बीन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू। हम आपकी एनजीओ के बारे में जरूर पूछना चाहेंगे, बट दैट इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली सेपरेट सेगमेंट, मे बी एट सम अदर टाइम। इस वक्त जो है कौम बहुत ज्यादा दुख में है अपने इतने पॉपुलर लीडर को ऐसे देख के। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ना सिर्फ जो सऊदी क्राउन प्रिंस की वो मूवी में नजर आई, क्योंकि मैंने मिडल ईस्ट में काम किया बहुत अरसे, तो मुझे सैकड़ों ही मैसेजेस आते थे मिडल ईस्ट से कि भाई तुम्हारे मुल्क में एक पहला ही लीडर आया था जिसको हम सलाम करने को दिल करते थे, खासतौर पर जो उसने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच कर दी थी, उसके बाद तो सारा अरब वर्ल्ड उसका दीवाना हो गया था। तो ये तुम लोगों ने क्या किया? तो पीपल नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अक्रॉस द ग्लोब आर वेरी वेरी अग्रीव्ड कि इन्होंने ये एक अच्छा ताकतवर एक मुस्लिम लीडर आया था उसका इन्होंने क्या हाल किया है। तो अभी के लिए तो हम आपको खुदा हाफिज बोलेंगे, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा जो रोल है, जो आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क है आपकी और आपकी बेगम का, उसके ऊपर भी हम जरूर बात करना चाहेंगे। सलमान, आई एम एक्सट्रीमली एंड ट्रूली ऑनर्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड गिविंग मी दिस टाइम एंड पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। और हम आपके साथ जरूर फिर इंशाल्लाह जुड़ेंगे। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।
थैंक यू।
यू आर वॉचिंग ई आवाज टीवी, वॉइस ऑफ कम्युनिटी। You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ABS Friends Entertainment, Basba Empire, Mo Sheikh and AAA Production present The Legend of the Legends, Gurdas Maan. Saturday, 28th October, First Ontario Centre. Tickets are available on ticketmaster.ca. For sponsorship and VVIP tickets, contact
Sunny Bajpa 416-562-1120, Tony Jol 416-818-2020.
A child's smile can make a big difference when it comes to their health. If you have kids under 12, earn less than $90,000 a year, and do not have private dental insurance, you may be eligible for the new Canada Dental Benefit. You could get a direct payment of up to $650 per child for dental care. Now that's something to smile about. To learn more, visit canada.ca/dental. A message from the Government of Canada.
रियल एस्टेट दी दुनिया विच थोड़ी कामयाबी एग्जीक्यूटिव होम्स रियल्टी, जिथे तुसी 1.5 लाख तो 2 लाख साल दा कमा सकदे हो। इस तो अलावा फ्री बायर एंड सेलर लीड्स, वीआईपी एक्सेस टू प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, वन ऑन वन सेल्स एंड मार्केटिंग मेंटरशिप, टीच एंड ट्रेन प्रोग्राम, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न ऑफिस with private room, in-house mortgage and lawyers team, in-house projects investment opportunity. Phir der ka di, aao te join karo Executive Homes Realty ya call karo 905-890-1300 ya visit karo ehrb.ca.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਵੀਂ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ 2023 ਦੀ ਫੋਰਡ ਐਸਕੇਪ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਔਰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 13 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1.99% ਦਾ APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਟ 2023 ਐਸਕੇਪ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care.
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक्ट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ब्रैम्पटन ऑन स्टेज 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन पर अहद रजानीब को हैमलेट के किरदार में देखकर खुश और वेलकम करते हैं। हैमलेट जो आजकल के दौर के लिए गजबनाक, तेज रफ्तार, इंतकाम और दागदार मोहब्बत की कहानी है। क्या आप हमारे डेनमार्क के शहजादे के साथ बाइज्जत, खुशहाली, पागलपन के दरमियान लाइन पर चलने की हिम्मत करते हैं? ये तब्दीली सिर्फ सच्चा सानिया ही ला सकता है। देखना मत भूलिएगा हैमलेट 12 से 18 अक्टूबर तक द रोज ब्रैम्पटन में। सेल टिकट्स खरीदने के लिए विजिट करें brampton on stage.ca।